पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदादये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वकार्य नमो।
कहीं लौकिक रीति में हमने सुना है ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ा तो पंडित ढाई अक्षर का ये बना हुआ प, उसमें लग गया है र, उसमें एकार लग गया है प्रेम, या ढाई अक्षर। किंतु जो पढ़ा तो पंडित को, और जो नहीं पढ़ा वो पंडित। जगत के लोग पढ़ पढ़ करके मर गए, कोई पंडित नहीं हुआ, प्रेम नहीं पढ़ा, ढाई अक्षर पढ़ने को। इसी को हम एक रामचंद्र जी के उपाख्यान से और कृष्ण के उपाख्यान से, दोनों लीलाओं से हम बताएं ये क्या चीज है। अब तो उसको पानी पीना है वो पीने, इसके बाद में बंद कर दो, मैं तो वो डिस्टर्ब करेगा, जिसको पानी लेना है वो ले ले, इसके बाद में दम बंद। अब पानी उन्हें मत मांगो,
थोड़ा
थोड़ा करना, जब कोई मांगे तब लाना, अपने मन से मत लाना। हमारे महाप्रभु के कृपा पात्र रूप गोस्वामी ने उत्तम भक्ति का लक्षण बताया। इसके पहले भक्ति के लक्षण वेदों में और दूसरे पुराणों में ये सब लिखित, किंतु महाप्रभु जी की प्रेरणा से रूप गोस्वामी ने भक्ति का जो डेफिनेशन दिया, परिभाषा, वो अपूर्व था। भगवान के चरण में फूल देना ये भक्ति है, साधारण लोग ऐसा करते हैं। भगवान का नाम ले लेना ये भी भक्ति है। माता की और पिताजी की भक्ति भी ये भक्ति है। इसी तरह से साधारण रूप में ये सब क्रियाएं भक्ति को मान लिया जाता था, या साधारण लोग अभी भी मानते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते चीनी को बहुत सब चीनी और सबको मिला करके देते हैं, कबूतर को वो देखा है जयपुर में भोरा का भोरा ज्वार लेकर के छींक देते हैं, और दिन रात कबूतर लोग खाते रहते हैं। जयपुर के मंदिर में भी ऐसा होता है, ये सब क्रियाओं को ही भक्ति मान लेते हैं। किंतु भक्ति किसको कहते हैं, हमारे रूप गोस्वामी ने कहा, इसके पहले भक्ति के लिए बदला सा परानुरक्ति ईश्वरे। सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति जो परा अनुरक्ति है, उस अनुरक्ति को कहते हैं भक्ति। कहीं कहीं ये लिखा गया लौकिकी वैदिकी वापी जाक्रिय क्रियते मे हरि सेवानुकुलेव साजा भक्ति। लौकिकी वैदिकी वापिजा क्रिया क्रिय लौकिक क्रिया वैदिक क्रिया और जो लौकिक और वैदिक नहीं है लोक अनुसार में चल रही है कोई भी क्रिया यदि भक्ति के अनुकूल है कृष्ण के प्रीति के अनुकूल है तो उसको उस क्रिया को भी रूप गोस्वामी ने श्रीमद भागवत में भी लिखा सब ऐसा करो धर्मो जतो भक्ति भक्ति अहे तुच्छ प्रतिहता जयात्मा संप्रति परीक्षित महाराज का काल आ गया है मरने के लिए एकदम तैयार बैठे संसार से उन्होंने अपनी आसक्ति हटा ली 7 दिन के अंदर में तुमको जो कुछ करना है कर लो। इस ऋषि के पुत्र ने अभी संपात दिया था मैं 7 दिन का तुमको समय में इसमें जो इच्छा हो चुका क्या करेंगे गंगा के किनारे बैठ गए प्रायोपवेशन पानी के लिए तो हमारी ये दुर्गति है ऋषि के गले में सांप था अब पानी भी नहीं पिएंगे खाएंगे भी नहीं सोएंगे भी नहीं कुछ भी नहीं क्या करना चाहिए ये चिंता कर रहे हैं और इतने में लाखों हजारों ऋषि लोग आ गए परम भक्त हैं जो भविष्य को बदल सकते हैं ऐसे ऐसे कर्म की रेखा को मिटी नहीं जाती उस रेखा को भी मिटाने वाले ऐसे ऐसे ऋषि उसमें आए मैंने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी भी आ गए नंग दड़ंग कोई प्रयोजन नहीं भिक्षा की भी जरूरत नहीं जो कपड़े ही नहीं पहनते हैं भूख ही नहीं लगती उनको क्या जरूरत है तो भी उस सभा में आ गए तो उन्होंने पूछा जो परम धर्म है हमारे लिए वो बताया कि हमारे लिए क्या करनी है मैं तो एक दिन में मर जाऊंगा 7 दिन की मृत्यु है और जो कोई ठीक नहीं है गारंटी ये कल मिलेंगे कि अभी मरेंगे कि परसों की बरसों कोई थी उन लोगों के लिए क्या करना आप निष्कपट रूप में हमको बतलाइए कोई छल छंद नहीं आपको मुझसे लेना देना कुछ नहीं है आदमी जब स्वार्थ में बधा होता है तो दूसरों को ठगने के लिए उसके मन के मुताबिक बात करता है आपने तो हमारा अन्न खाया नहीं जल खाया नहीं आपको मुझसे लेना भी नहीं है आप हमको प्रसन्न भी नहीं करना है आप सीधी सीधी चुपती चुपती जैसी भी बात हो सच सच बतलाए हमारे लिए क्या कर सकते हैं और जो 7 दिन की मुक्ति भी नहीं है आज ही मुक्ति है अभी पल में परलय हो यगी आप बहुत नहीं करोगे अभी पल में मुक्ति हो जाएगी अभी जानते नहीं है दिल्ली वहां से मथुरा से आ रहा कार में हम लोग आ रहे थे देखा जी 2 कार चकनाचूर पड़ी थी और उसके ऊपर में नीम का एक बहुत बड़ा भारी मोटा गिर गया आंधी आई थी और बरसात जोरों से हो रही थी और गाड़ी स्पीड में है अब स्पीड में है गाड़ी और पेड़ गिरने वाला है और बतलाइए जिसे कितना सेकंड लगा होगा कि उसके नीचे आकर के आगे नहीं जा सका कितने अंतर 60-70 की स्पीड से तो गाड़ी चली गई होगी आप पेड़ के गिरने में भी तो कुछ सेकंड लगेंगे किंतु ऐसे मोमेंट में गिरता है वो पेड़ जो आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ सका और वहां पर तो दोनों गाड़ियां दोनों सूख गई अब उसमें कितने आदमी मरे कि नहीं मरे क्या हुआ नहीं ये पता नहीं कि तो दोनों गाड़ियां चकना चूर नहीं पड़ी कितना सेकंड लगा कभी 1 मिनट पहले वो सोचा होगा या अभी तक पेड़ आगे से गिर रहा होगा वो एक बाइक नहीं गिरता गाड़ियों के साथ तो ऐसे ऐसे गिरा किंतु गाड़ी का फोर्स ऐसा ठीक उस फोर्स से आई और फिर गिरा उसी के नीचे वो सब 1 सेकंड सोचने का समय नहीं मिला होगा
तो नियोजित योजना हो गई ये सब
हम लोग होते तो हो सकता था निकलता राम राम कृष्ण को किया जाता साधारण लोगों के ये सब चीज नहीं आई मृत्यु का कोई ठीक नहीं है ये कब आ जाएगी, परीक्षित महाराज का तो गारंटी है उसके पहले मृत्यु नहीं आएगी, है ना। हम लोग की गारंटी कुछ नहीं है क्या कब हो जाएगा, कल में कब लगेगा, इसे उन लोगों के लिए क्या कर्तव्य है ये एक सेकंड में मृत्यु आनी है, एक सेकंड में उसका कल्याण कैसा है ये भी बतला दिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं एक मिनट में एक सेकंड में भी कल्याण हो जाए, कैसे होगा। यदि मरते 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 राम या कृष्ण का नाम आ गया भगवान का नाम, और कोई दूसरा उपाय है, इसलिए परीक्षित महाराज जी से प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा जी अच्छा तो ठीक है सुनो, हमारे बात तो विश्वास है या तो पक्का विश्वास, पहले पक्का विश्वास के साथ में ये सब चीजें सुननी चाहिए। आप विश्वास नहीं है तो वो सुन करके वो काम से गौर कर रहे हैं, पक्का विश्वास के साथ वो सुन रहे थे किस लिए, परीक्षित महाराज जी के सुनने और हमारे सुनने में अंतर है कि एक ही है कि संसद वो दिल प्रतिज्ञा करके उसको परिणत करने के लिए सख्त संकल्प करके बैठे हुए हैं, जो ये महात्मा कह देंगे और हम लोगों में क्या है, यदि हमारे अनुकूल होगा तो मानूंगा, नहीं तो आपकी बात नहीं मानूंगा। हम भी कहते हैं यदि हमारी बात अच्छी लगे तो करो और न अच्छी लगे तो मत करो, वहाँ पर ये सब चीजें नहीं है।
अच्छा लगे अपना लो, जब बुरा लगे अपना लो।
आइए आप लोग बैठिए। तो हाँ क्या बतला रहा था
वो,
उन्होंने कहा सभी पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति जतो खेले, उनको भी बैठाइए
थोड़ा थोड़ा और शिलिंग हो जाए।
हाँ आ जाइए, बहुत काफी जगह है। तो सभी पुंसान परो धर्मो जतो भक्तिर अधोक्षये अहेतुक्य अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। उस समय संस्कृत मातृभाषा थी, जिस समय सभी लोग संस्कृत सुनाई, सुखदेव गोस्वामी ने संस्कृत भाषा में ये बतलाया। संस्कृत भाषा माने सुधर हुई भाषा जो प्रभु तक भी पहुंच सकती है, ये भाषाएं वहां तक नहीं पहुंचती, ये इसके संस्कृत भाव हों तक पहुंचे, संस्कृत बने तो खड़ी नहीं पाएगा। तो सवाई पुंसान, वही माने शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से पृथ्वी डोल जाए वो नहीं डोलेगा, वो निश्चित रूप में होगा ऐसा। तो सवाई पुंसान परो धर्मो, यदि कोई इस विश्व ब्रह्मांड का जो संचालन करने वाला समस्त ईश्वरों का जो ईश्वर है, जो सबका आदि है किंतु स्वयं अनादि है, दूसरे का तो आदि है वो सब उसी से निकलते हैं और स्वयं कैसा है इसका कोई आदि नहीं, वो जो परमेश्वर है उनको पुरुषोत्तम कहते हैं भगवान, उनके चरणों में अहेतु की भक्ति यदि हो, अहेतु की सेवा की वासना हो तो उसको कहते हैं भक्ति। शैल धारावत अभिच्छिन्न गति से उनके चरणों में मन की गति लगे और बिना किसी कारण से तो उसको कहते हैं अहेतु की। माने क्या, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं अभी कारण से, कारण क्या, अधिकांश लोग ये समझते हैं संसार का ये जो दुख है कैसे जाए, हमें जो कुछ अभाव है ये कैसा है। तुम इधर मन देकर के बैठा सुनो तो नीचे बैठ सकते एकदम मन से और हट जाए, तो प्रेम से सुनो जो कह रहा हूँ ना, तुमको बहुत काम देगा। जी एक कहानी उसमें कहूंगा तो तुमको रुक दिया जाएगा। अहेतुकी हो और टूटने वाली बीच में न हो, मधु को ऊपर से गिराओ तो कैसा तार नीचे से ऊपर तक बच जाएगा। ठीक वैसे नयन तर्जमयी उसका तार न सूखने वाला अहेतु की उनके प्रति भक्ति भागवत में लगता है। मन की गतियां जब ब्रह्म भगवान के तरफ में जब चलती है और कभी टूटती नहीं है और उसका कोई हेतु नहीं है स्वाभाविक रूप में हो तो इसे भक्ति भागवत में कहा गया। महाप्रभु जी के अत्यंत प्रिय व्यक्ति रूप गोस्वामी ने लिखा अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनाभृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। भक्ति बहुत प्रकार की होती है। जहां पर लिखा गया बेस्ट तो वहां पर और इसका कुछ दो और पाए जाए बाकी शब्द हैं क्या होगा गुड बेटर ये तीन है ना, नहीं तो बेस्ट नहीं होगा। इसलिए कोई गुड चीज है बेटर है गुड से बेटर हो गया और एक हो गया बेस्ट। तो यहाँ पर उत्तम यदि लिखा उत्तमा भक्ति तो एक मध्यमा भक्ति है और एक भक्ति एक वो भक्ति है सगुणा उपासक सगुणा अथवा कामनामयी सकाम भक्ति है। अपनी कामना के लिए प्रभु को स्मरण करते हैं तो ये भक्ति विकसित हो गई। कुछ कुछ अपनी और कुछ कुछ सुनने की कुछ कुछ मैं करता हूँ उनके लिए भी कुछ अपने लिए तो ये हो जाएगी मध्यमी। और सब कुछ करते हैं उनके लिए ये साधारण लोगों के दिमाग में नहीं आएगा। जब साधु संघ बहुत कुछ करेगा जब चित्त निर्मल होगा तब इसको समझ सकते हैं। अब इसी चीज को समझाने के लिए एक थोड़ा सा उपाख्यान के माध्यम से सुना। महाराज दशरथ की इच्छा से आज्ञा से राम लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या को छोड़कर के वनवासियों का बेस बनाकर अयोध्यापुरी के शोक के समुद्र में डुबाते हुए चल पड़े। सारी अयोध्या के स्त्री पुरुष बाल वृद्ध वनिता उनके पीछे पीछे लगे। जब राम ही नहीं तो फिर अयोध्या क्या, जहाँ राम रहेंगे वहीं हम रहेंगे। यहाँ तक की कैकेयी ने तो कहा था जब सब प्रजाओं ने कहा अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे हम वहीं पर चलेंगे, महाराज दशरथ ने कहा जी ये सारा खजाना सारी प्रजाएं और सारा धन संपत्ति ये सब सेनाएं सब राम के पीछे पीछे चले हुक्म दे दिया। कैकेयी उठ करके खड़ी हो गई, ये डर हमको नहीं लेना है, हमने तो भर के लिए राजा कहने बनाने के लिए कहा है तो प्रजा ही नहीं रहेगी, कोष नहीं रहेगा, खजाना नहीं रहेगा, सेना ही नहीं है, मंत्री परिषद नहीं रहेगा, राजभवन नहीं रहेगा, राजभवन रहेगा नगर रहेगा सुना लेकर के उल्लू सब रहते हैं इसमें उसमें हम लोग ऐसा बर नहीं क्या सारी प्रजाएं यहाँ रहेंगी राजकोष भी रहेगा वही भाव वही यही रहेगा राम लक्ष्मण सीता ये तीनों जाए। बड़ी पूरी के सब लोग बड़े दुखी हो गए। रामचंद्र जी सबको छोड़ करके रुलाते हुए सारी प्रजाएं उनके पीछे पीछे दशरथ ने कहा या रथ पर बैठ कर के जाएगा जाओ सुमंत्र ले जाओ और रथ से उनको प्रसाद दिखला करके बंद अब फिर ले आना। रामचंद्र जी बड़ी मुश्किल से रथ पर चढ़े चढ़ नहीं रहे थे, जब बनबाटरी ले लिया तो फिर यहीं से चलना है तो यहीं से चलेंगे किंतु लोगों ने माना नहीं जबरदस्ती चढ़ा दिया। जब वो बन में चले गए पहली रात को जहाँ रहे वो जहाँ पर कि निषाद राज था वो प्रयाग से इधर में अयोध्या से थोड़ा सा दूर वहाँ आकर के रात में सब लोग सबको छोड़ करके केवट के नौका पर चढ़ करके डूबा चले गए। केवल निषाद राज को साथ लिया और किसी को नहीं, तीन वो और निषाद राज गंगा को पार कर दिया प्रयाग में पहुंचे, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच कर बोले जी मैं कहाँ रहूं। तो जी आप जगत को आप रखते हैं और हमसे पूछते हैं, मेरे चाचे चित्रकूट में रहे। चित्रकूट में उनको कहा, चित्रकूट में उठा के चले। वहां पर जब पहुंच गए लक्ष्मण जी ने वहां पर कुटी बना दी, बड़ी सुंदर ये बनाया घास फूस का, उसमें ये लोग गृह प्रवेश किया, ऋषियों ने हवन किया, वस्तु की पूजा की और उनको रखा। जब कुछ दिन बीत गए इधर में भक्त जी और शत्रुघ्न निहाल में गए थे मामा के यहाँ, वहां से आए उनको बुलाया गया और अयोध्या की दशा देकर के बड़े शोक मग हुए। जब पैकेज से पूछा जी ये क्या पिताजी नहीं है घर में, तो नहीं वो तो लोग सर लोग को सुझा गए। अरे मेरे भैया नहीं देख रहा हूँ राम को, वो कहाँ गए। तो यही तो बात है, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया। क्या किया, मैं बसर से भी ये बर मांगा था और बर मांगने के साथ में राजा तो राम राम कह करके चले गए, और भैया को मैंने मांगा था जैसे आप वो बनने जाएंगे तो अपनी पत्नी को सीता को और लक्ष्मण लेकर के चले गए। तो आज से तुम्हारी मेरी मर्यादा, आज से ये संबंध कट गया। यदि राम अप्रसन्न नहीं होते आज तुमको मैं खंड खंड काट देता, मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता। मैया आपका नाता नहीं रहा, तुम हमारी मैया नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। इसके बाद तुम चले गए। अब तक को लेकर के मैंने कहा कि अब मैं अयोध्या नहीं रहूंगा, यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगा, मैं तो राम को मनाने के लिए चलूंगा। जो उनको मना करके ले आऊ वशिष्ठ जी से आज्ञा मानी, उन्होंने आज्ञा दिया। सब पुरी के सब लोग निकले, मैया जी दोनों निकली, कौशल्या जी और सुमित्रा जी। कैकेयी जी अब तक किसी से बोल नहीं रही थी, बड़ा उनको दुख हुआ कि बेटा भी हमारा आज हमको छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने किया वो भी छोड़ दिया। ये मैया कहने के लिए राजी नहीं, हम तक बातचीत नहीं कि हमारा शत्रु बन गया, इसीलिए मैंने किया। कैकेयी जी जाकर के कौशल्या के चरण पकड़ लिए, आ रहा समझ में ना, चरण पकड़ लिया और रोने लगी। अरे क्यों रोती है बहन, असमित तुम्हारे साथ चलिए चलिए, भरत हमको नहीं ले जाएगा, किंतु तुम्हारे आदेश को वो उल्लंघन नहीं कर सकता। राम उल्लंघन कर सकते हैं किंतु भक्त तुम्हारा आदेश उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए तुम हमको आदेश दो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। उन्होंने कहा अच्छा बहन चलो। कितना करुणा का समुद्र उमड़ रहा है, राम की लीला में यही विशेषता है
करुणा
करुणा। और लोक शिक्षाएं की मर्यादाएं मर्यादाओं की शिक्षाएं, कृष्ण की लीला इसे दो अंगुल ऊपर है, इसलिए उसको समझना बड़ा भारी तेरी ठीक है, तेरी ठीक और समझ में नहीं आएगा, किंतु जब समझ में आ जाएगा ना फिर कभी माया में नहीं आएगा। तो उनको लेकर के सभी लोग चल पड़े, धीरे 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 चित्रकूट में पहुंचे। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण जी को तम समा गए उनको देख करके, सोचा जी आज मैं भक्त को मार डालूंगा। ऊपर में चढ़ करके शीशम के पेड़ पर देखा, बड़ी भारी सेनाएं आ रही हैं और उस पर सूर्य वंश का जो ध्वजा है उस पर हुआ है, इसलिए बड़े वो समय। राम ने कहा कि जल्दीबाजी का निर्णय गड़बड़ का होता है, खूब सोच विचार करके कोई निर्णय लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको पीछे पछताना पड़े। हमको ये विश्वास नहीं हो जाए कि भरत हमसे लड़ने के लिए आ रहा है, उस इसमें बात दूसरी के तरफ देखो तो आने तो दो, तुम्हारी चिंता तो कभी काम आ सकती है, आमने सामने पहले से मारने की क्या जरूरत है। बड़ी मुश्किल से उनको समझाया समझे, जब भर दिया तो उनके चरणों में गिर गए। गिरने के बाद में पहला संवाद दिया कि पिताजी आपके गृह में राम कहते हुए राम दूसरी बार राम नहीं आया। फिर रामचंद्र जी
उनको मालूम नहीं चला
कोई संवाद देने वाला तब तक तो है। पहले बात बताओ पहला कर्तव्य क्या है? पिताजी का शाद करना। इन्हें पिताजी का सम्मिल करके लक्ष्मण जी और लोगों ने तो साध कर दिया था, साध करने के बाद नहीं चले थे, किंतु राम जिस पुत्र हैं इसलिए वो और लक्ष्मण जी रह गए थे। वो वहीं पर गोदावरी के तट पर गए, कोई ब्राह्मण आया और उन्होंने उनको जलांजलि दी, इमली के बीज को पीस कर सत्तु बनाया गया। इमली
काला काला बीज होता है
और उसी के बीजे से पीस करके पानी में लगाकर उसका पिंड बना करके और अपने पिता वहां पर और दूसरा कुछ खाता नहीं, चावल को दिया, पेट वैदिक मंत्रों के साथ में दिया। इसके बाद में बड़े शोक मग्न होकर के यहाँ पर आया। अब इतने में ये लोग तो आए ही, ये खबर मिली महाराज जनक को, जनक भी अपने जमाता और बेटी को देखने के लिए सारी प्रजाओं की इच्छा है जयराम लौट जाए। सबसे बड़ी इच्छा है भारत में ये राम लौट। रात में वो वशिष्ठ जी के यहाँ गए। महाराज वशिष्ठ जी आप हमारे कुल गुरु हैं, राम आपके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। आराम से बैठेगा कोई तो नहीं जा जाएगी, तो आप इनको आदेश दे दीजिए, आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे ना। आप हमारे तरफ से कृपा करके ये राम से कहिए आप अयोध्या को लौट करके राज्य को स्वीकार कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकते हैं, मैं ये गलत पथ पर हूँ जो उनको ले जा रहा, गलत पर नहीं हो तुम
मैं क्या नहीं सकता,
किंतु राम गलत है ये भी मैं नहीं कर सकता, मैं भी दुविधा में हूँ। अभी तुम ठीक है कि राम ठीक, हम जब तुम्हारे तरफ में देखते हैं तो ऐसा लग रहा है तुम पक्के ठीक हो, और जब रामचंद्र जी के तरफ में देखता हूँ कि वो पक्का ठीक है, उसके बाद में कोई बिगाड़ नहीं है, इसलिए मैं कैसे कर सकता हूँ। जब वो नहीं माने बड़े दुखी हो गए, क्यों नहीं बोले वो वशिष्ठ जी भक्ति की रीति को जानते हैं, साधारण आदमी नहीं है, जो रामचंद्र जी के कुल के और रामचंद्र जी के गुरु हो सकते हैं तो वो कैसे होंगे भक्ति तत्व को जानने वाले, किंतु अभी किसी को दिखलाए नहीं जो मैं जानता। तब वो जाकर के रात ही रात में वो गए कौशल्या जी, भैया हमारी एक बात तुमको पूरी कर दी। उन्होंने क्या बेटा तुम्हारी बात पूरी करनी होगी तो ऐसे नहीं तुम हमारी बात को बतलाओ जैसे जरूर पूरी कर, तो बेटा पहले हमको बतलाओ ये क्या बात है, मैं ऐसे कैसे कहूं। तो जब देखा भट जी ने ये ऐसे नहीं कहेगी तो उन्होंने स्वीकार कर दिया, तुम राम को कह दो ये अयोध्या को लौट करके राज्य को ग्रहण करें। ये मैं कैसे कह दू, तो कैसे नहीं मैं अन्याय कह रहा हूँ, तो नहीं तुम अन्याय कह रहे हो तो फिर तो क्यों नहीं कहती, तो जो राम तो भी अन्याय नहीं कह रहा है मैं क्या करूँ, राम भी अन्याय नहीं कर रहा, वो पिताजी के आदेश को मानने के लिए वन में जा रहा है, तो मैं कैसे कह दूं। वो राम कहता है कि यदि केवल मैया या मेरे बाप कहते तो मैं होश ले लेता कि मैं क्या करूं, किंतु मेरी मैया ने पहले कहा कौन मैया और पिताजी ने भी उसका समर्थन किया तो ये वोट उनका अधिक हो गया, इसलिए मैं बनने जाऊंगा उनके आदेश को पालन कर, इसलिए उनको मैं कैसे मना करूं। ये मध्य बात यह है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा तो कभी नहीं तोड़ता। अब तुमको भी देखता हूं ऐसे ही, इसलिए मैं अन्याय कैसे करूं, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसके बाद में सुनैना जी को बुलाया गया। सुनैना कौन है?
पिताजी की माता,
पिताजी की मैया माता, पर जी ने बुलवाया। वहां पर कैके जी बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं, बड़े आदर से इनको बुलाया। वशिष्ठ जी ने अनाउंस किया इसका निर्णय, महाविदेह राज जो है जनक है वो निर्णय देंगे जो क्या करना है। भरत को राम दोनों को बुलाया, कल सभा होगी, ऋषि महर्षि लोग आएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी गुणी आएंगे और उसमें विचार होगा, और जो उचित विचार होगा वही भरत जी को और राम को आदेश दिया जाएगा। भरत जी को स्वीकार है, उन्होंने कहा आपको स्वीकार है, और राम से पूछा जी आपको स्वीकार है तो जरूर स्वीकार है, जो ये निर्णय कर जनक उसको दोनों के लिए मालने के लिए हम लोग बातें हैं। भरत जी को पक्का विश्वास है उनकी बेटी है ना सीता, तो वो कैसे कहेंगे जिसे बन गए जाओ। और रामचंद्र जी कहते हैं कि ये बड़े विवेचक हैं, ये अन्याय कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन दोनों राजी हो गए। अब अनाउंस हो कर दिया गया जैसे कल बड़ी भारी सभा बैठेगी और उसमें निर्णय करेंगे वो, और उस निर्णय के लिए दोनों को मानने के लिए बात हो गया। अब जब हो गया तो भरत जी चुपके से उनको बुलाया या उनके पास में चले गए सुनैना जी के।
अच्छा, उसके बाद
निर्णय के बाद सुनैना जी के पास में कहीं यदि उन्होंने राम के पक्ष में बात कर दी तो सब गुरु गोबर हो जाएगा, इसे क्यों नहीं पहले
सिफारिश ले।
सबसे सिफारिश किसकी अच्छी हो सकती है? पत्नी के बात को सहजी या, और ये तो पति पड़ता है इसे, और पिताजी की मैया भी है, इसलिए उनके पास में सिफारिश पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़े, वो भी माही लगती है मैया आप तुमको बचा, मैं तो नहीं मर रहा बेटा, क्या बात है। तो तुम जनक जी से ये कह दो कि भरत जो कह रहा है न्याय संगत है। अच्छा तुम बतलाओ कि मैं कह रहा हूँ न्याय संगत है कि नहीं, तो न्याय संगत है तो तुम यही कह दो कि भरत जी न्याय संगत कहता है उसके पक्ष में राय दे रहे हैं। अरे ये कैसे हो सकता, मैं उनके न्याय विचार में मैं आज तक मैंने दखल नहीं दिया, देखिए कैसे कैसे पाप हैं, उनकी अपनी लड़की है स्वास्थ्य में बदा होना चाहिए, स्वास्थ्य का विचार नहीं। राम के लिए जंगल ठीक नहीं, ये भी जानती है, भरत कह रहा है तम हित का बात कह रहा है, तभी कुछ दखल नहीं दिया। बहुत उन्होंने चेष्टा की, अच्छा मैं जा सकती हूँ उनसे, किंतु मैं ये नहीं कर सकती, गारंटी नहीं दे सकती कि क्या बात हुई, मैं उनसे कभी भी विचार में हमने दखल नहीं दिया,
सिफारिश कर दूंगी।
बस यहाँ तक तो हुई, भरत जी देखिए कहाँ कहाँ सोच लगाए, मैया से सोच, गुरु से, फिर अब उनकी सुनैना साथ से, सब जगह उन्होंने ये लगाया। अब सभा बैठी, बहुत विशाल सभा बैठी, एक तरफ ऋषि महर्षि जो त्यागी संत लोग हैं उन्हें बैठे, दूसरे तरफ में ये जो वहां से अयोध्या वाले सब गए थे मैया इत्यादि सब तीनों बैठे, वशिष्ठ जी बैठे, एक तरफ में राम बैठे क्योंकि अब वनवासी अब हो गए हैं ना, किंतु पत्नी को साथ रखा तो तभी ये वनवासी में इनकी गिनती हो गई, इसलिए उधर में बैठे, और भरत जी किधर बैठे, मैया जी घर में है और वहां की जो प्रजाएं हैं उनके तरफ में बैठे। उन्होंने कहा, भरत जी ने प्रसन्न किया, पहले तो अपने गुरु को प्रणाम किया, गुरु जी कृपा करके ऐसी बुद्धि देंगे जो हम मैं कहीं गड़बड़ न कर लू, ये साधारण बात नहीं इसकी इसका निर्णय देना, ये जजमेंट बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत आगे का काम कार्य है, इस निर्णय पर सारा विश्व ही एक तरह से निर्भर करता है। अपने गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी को प्रणाम करके विचार करके बोल
जनकी
जनक विचार करके बोल। मैंने सब तरह से विचार करके देखा, जो भरत जो कर रहा है बहुत ही न्यायुक्त है, बहुत ही
न्यायुक्त।
किंतु भरत जी जब तरफ में जब राम के तरफ में विचार करता हूँ तो राम जी का देखता हूँ, राम का मर्यादा से पंधा हुआ है। ये मर्यादा का पहाड़ है, कई हजार आंधी तूफान बरसा आए ये डोलेगा नहीं, एकदम जैसा का तैसा ये खड़ा रहेगा। ठीक, इसको डुलाना संभव नहीं है किसी चीज से। और भरत जी का क्या है, उसका है प्रेम, भातृ प्रेम। वो ऐसा है कि ऐसे ऐसे पहाड़ों को वो डुबा देगा। जहाँ प्रेम है वहां पर रीति नीति बहुत नहीं होती, मर्यादा का बंधन नहीं रहता। इसलिए मैं सब प्रकार से विचार करके देखता हूँ कि इस विषय में भरत जी की जीत है और राम का पराजय है। भक्त के प्रेम में रामचंद्र जी का मर्यादा डूब जाएगा। सब जगह ताली बजने लगी और बड़े प्रसन्नों में भरत जी एकदम आनंद से एकदम भर गए। मैयाओं भी जितनी भी माताएं थी वो भी, और प्रजाओं का ठिकाना नहीं, भरत जी तो उत्सुक हो गए। आज मैं पति आने को मैं आज मर जाता, राम का विरह मैं नहीं सहता। थोड़ी देर के बाद में बोले ठीक है, भरत जी की जीत है। प्रेम सब समय ऊंचा होता है, मर्यादा उतनी ऊंची नहीं होती जितना प्रेम होता है। कृष्ण के और राम के लीलाओं में यही भेद है। कृष्ण लीला है जो वो प्रेम का माधुर्य है, और राम की लीला मर्यादा का पहाड़ है। ये सब से मत नहीं, किंतु उसको भी डुबा देगा, किंतु डूबने पर भी वो पहाड़ इधर उधर नहीं
हटेगा,
धारा में बहेगा नहीं,
डूबा रहेगा पर वही रहेगा,
वही रहेगा। अब विचार कर रहे हैं यहाँ पर, भक्ति का विचार ले आ रहा है। मैं कहा देखो, प्रेम की भी एक अपना नियम है, बिना नियम का प्रेम भी नहीं होता। प्रेम में एक बात होती है, एक प्रेमिक होता है एक प्रेमी होता है, जिसके प्रति एक प्रेम किया जाता है और जो प्रेम करता है। जिसके प्रति प्रेम किया जाता है उसको कहते हैं विषय, और जो करता है उसको कहते हैं अर्थ। भरत जी प्रेम के अर्थ हैं और राम क्या है, प्रेम के विषय हैं। भरत जी से जीत मैंने कह दिया है, अब जो प्रेम करता है उसको ये सोचना है, देखना है, ये नियम है प्रेम का, अपना दुख सुख सब कुछ भूल जाए, अपनी कोई आकांक्षा न रहे, है सुखी हो वो प्रेम। ये देखता है कि हमारे प्रभु को किस प्रेम से, किस सेवा से, क्या करने से वो सुखी होगा, बस यही विचार करता है। आया समझ में? जो प्रेम करता है वो ये देखे, अपना सुख दुख न देखे,
अपने प्रेमी
एक साधारण रूप में देखो, एक मैया को बच्चा हो जाता है, मैया अपना सुख नहीं दुख नहीं देकर के दिन रात बच्चे को, रात में क्या क्या बच्चा करने लगा, उठ करके कोई अपना सुख दुख नहीं देखती और उसका पालन पोषण करती है, रात भर सो नहीं पाती, यदि बच्चे को कुछ हो गया रोता रह गया, ठुकरा देगी बच्चे को या थप्पड़ मारेगी। और ऐसे माँ को जो छोड़ देता है उसका समान और जगत में कोई पापी व्यक्ति नहीं है, ये भी बात ठीक है। किंतु इसमें भी बहुत से विचार हैं, उन विचारों को मैं पीछे बताऊंगा। सब पिता और माता के ऋण से हम कभी भी नहीं दूर हो सकते, किंतु यही देखना है कि पिता यथार्थ में कौन है। अभी हम इस प्रेम के प्रसंग पर आ रहे हैं। वर्जी का कर्तव्य क्या है, वो कह रहे हैं जनक जी तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम ये देखो, अपने सुख और अपना दुख मत देखो, तुम क्या चाहते हो ये मत देखो, देखो कि राम किस चीज में प्रसन्न है ये चीज देखो, इसका नाम है भक्ति। तुम ये मत देखो कि हमको किस में सुख है, राम के बन जाने में दुख है, राम के लौट आने में हमको सुख है, तुमको सुख रहा है, अभी तक तो तुम ये विचार कर रहा, इस विचार को छोड़ो, ये भक्ति नहीं है।
ये प्रेम नहीं है, वहां पर प्रेम का बंध भी। तुम ये विचार करो, राम को क्या करने से सुख हो, ये देखो। मैंने कहा कि आज मेरी नींद खुली, मैं तो यही देख रहा था जयराम लौट आने से मुझे सुख होगा। यद्यपि भक्त का इसमें त्याग है, अपने राज्य मिले हुए को राम को दे रहे हैं, किंतु भीतर से क्या है वो देख रहे हैं कि हमको ये सुख है। इस त्याग में भी हमारा सुख है, जिस त्याग में अपना सुख है वो प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। ये भी देखो, इसमें ये देखना है जिसके प्रति हमारी भक्ति हो रही है, कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, राम को हमारी इस क्रिया से सुख होता है कि नहीं। तुमको बहुत गर्मी लग रही है, अब तुम पंखा लेकर के उनको झलने लगे, घूमी जी, और गुरु जी को लगी है प्यार, खोप जोड़ो तो हवा से देने से काम चलेगा। ये देखो कि गुरु जी की क्या जरूरत है, तुम्हारी अपनी जरूरत छोड़ो, तुम देखो कि उसमें कम क्या करने से उनको सुखा। अतः तुम राम से पूछो या उनके हृदय में भीतर अंदर में जाकर के झांको,
उन्हें किसमें सुख है,
उनको किसमें सुख है, बन जाने में सुख है कि अयोध्या का राज्य लेने में सुख है। ये देखो, ये इसको कहते हैं हमारे सुख दुख के ऊपर में कृष्ण भक्ति नहीं है, हमारे उस क्रिया से जिससे कि राम प्रसन्न हो। इसलिए कहा अनुकूल कृष्ण अनुकूलनम भक्ति रूपना, अनुकूल माने कृष्ण को जो रुचि का रख रही है, उनको जो इच्छा है, हाथ की इच्छा है, उसको कहते हैं। इसलिए भक्ति साधारण प्रेम, साधारण प्रेम। रामचंद्र जी के पास में गए, आज मेरी नींद खुल गई, आज तक मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, मैं देखता था मुझको इसमें सुख है इसलिए राम को सुख होगा, किंतु सचमुच में राम के अंतर्दय के अंदर में मैंने नहीं भागा कि उनको किसने। वहां पर गए, राम को प्रणाम, ये प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा, आज मेरी नींद खुली है,
आपको क्या अच्छा लगे
आप बतलाइए तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा जी क्या करना क्या है, उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया है कि तुम्हारी जीत हो गई, मैं हार गया, तो सचमुच में हार गया, मैं ये समझता हूँ। इसलिए मैंने राज्य ग्रहण करने की बात ही तो है, तो मैंने राज्य ग्रहण कर लिया, बड़े आप तो चलेंगे
उधर डिक्लेयर हो गया उधर एक्सेप्ट।
मैं कहा जी से तुमसे यही चाहते हो ना, यहाँ हम राज्य ग्रहण, हाँ मैंने राज्य ग्रहण कर, तुम राज्य का भार जो तुम्हारे ऊपर में था, जो तुमको पिताजी ने दे गए थे और मैया से उतार रही थी, वो सब ठीक है, मैंने किंतु अब तुम एक बात करो, हमारा प्रतिनिधि होकर के, मैं ही राजा, तुम प्रतिनिधि होकर के इस राज्य को 14 वर्ष तक देखभाल करो, तुम्हारा नहीं है मेरा है, तुम अच्छी तरह से इसको चलाना जब तक कि मैं नहीं आ जाता, इसी में मेरी खुशी है। इस तरह से माता पिता सबकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, जगत में एक आदर्श रह जाएगा, ये माता का मैं पिता का ऋण से वो ऋण हो जाएगा, इसमें मेरी सहायता पश्चिम का आदेश लेकर के उनको खड़ा हूँ, मैं प्रतिनिधि नहीं रहूंगा, आपकी खड़ा ही आपकी उसी आपकी प्रतिनिधि है,
मैं सेवा करूंगा।
बस उनके चरण की पादुका लेकर के सिर पर रख करके उनके काम ढोलवाते हुए वे गए नंदी ग्राम में, और अयोध्या में भी नहीं गए, और वहां पर उसकी स्थापना की और उनकी सेवा करते और राज्य का कार्य करते। कहा कि एक दिन की यदि देरी हो गई तो ये भर्त का प्राण नहीं रहेगा, उसमें निकलेगी आग और उसे जला करके भस्म कर देगी, कहे कोई चिंता की बात नहीं, कह दे जलने की इधर में वहां तैयारी हो रही थी, और उधर में सुना जो रामचंद्र आ गए, बस विरह उनका समाप्त होगा, जब मिलेंगे, मिले कहां पर, नंदीग्राम से वहां पर आए चित्रकूट में, और दोनों वहां पर मिले, वहां पर
नंदीग्राम
वहां पर आए तो मिले, फिर वहां आकर के आराम से। यह है प्रेम, अपना सुख दुख नहीं है, तुकी उनके इच्छा के अनुसार में कृष्ण क्या चाहते हैं उसके लिए हम ये समझने चलते, इसलिए तब ये उत्तम भक्ति होगी। अब इधर देखिए, अब कृष्ण लीला में थोड़ा सा आई, यशोदा मैया कृष्ण को बांध रहे हैं, आंखों से आंसू अनवरत पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे रो रहे हैं जो कज्जल यहाँ से गिरा और आंखें तो पानी से मिल करके यमुना जी बहने लगी, इधर में गंगा जी बहने लगी और यहाँ से आते आते इतनी जोर की लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। त्रिवली यहाँ पर साफ दिखती है और उसमें तीन बड़ी हिलियत की है इधर पेट में, ये सौंदर्य का निशान है। असंख्य आदमी सुंदर होगा तो गले में तीन रेखाएं होंगी और पेट में भी तीन रेखाएं होंगी। कुंडल झलमल कर रहा है, जब लंबी सांस लेते हैं छोड़ते हैं ना तो कुंडल भी उनके बालों को चुंबन करने लगता है। अरे वाह वाह, ऐसा तो मानो कभी देखा है। यहाँ पर कृष्ण रो रहे हैं, आज जैसे एक लड़किया अफेद रोता है, बंदर बंदर बंधु इस तरह से चोर इत्यादि कह रहे हैं। फिर चोरी करने जाएगा, याद रहेगी ये बात, और वो रुक रहे हैं। उनको ऐसे नहीं होता बांध दिया, कमर में रस्सी लगा कर रो रहे हैं। ये रोना कैसी भक्ति? कृष्ण को इसका मतलब ये हो गया कृष्ण ये रो रहे हैं, कृष्ण को ये अच्छा लग रहा है, अच्छा तो नहीं लगता। इसको कैसे कहेंगे भक्ति? इसीलिए कह रहे हैं ये चारुण मूर्तिक है, कृष्ण से लड़ रहा। आज बहुत दिनों के बाद में एक वीर मिला और उसके साथ वीर रस का साधन करने लगे और पैसरा उत्साह सोखते हैं और फिर जाते हैं। आज बड़ा उत्साह हो रहा है, बहुत आनंद
कृष्ण को
इधर दांत से इस तरह से है और उधर में मंद मुस्कान उनके हंसों को खेल रही है, बहुत आनंद मिला। किंतु इसको भक्ति कहेंगे कि नहीं? कृष्ण को तो आनंद मिला, नहीं ये भक्ति नहीं है। क्यों? इसमें ये देखो जो आश्रय है जो चारुमूर्तिक है उसकी कृष्ण के प्रीति चाहता है ना अप्रीति चाहता है, क्या चाहता है? ज्ञान से मार डालना चाहता है। जिसे कृष्ण की वृत्ति आनंद भक्ति नहीं, जो आश्रय है उसकी वृत्ति इसके ऊपर में नहीं पाए, इसलिए कृष्ण को मार डालना चाहता है। भले ही कृष्ण